The following is the lecture on Bhagavad Gita, 10th chapter, text number 11, given by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, recorded on the 13th of March 2007 at ISKCON, New Delhi, India.
Nanda Godana Rakhovala Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundara Nanda Gopala Sundara Nanda Gopala Jamuna Tata Chara Gopi Pasanara Jamuna Tata Chara Gopi Pasanara Rasa Rasika Kripa Moya Rasa Rasika Kripa Moya Shri Radha Vallabha Vrindavana Natabhyara Shri Radha Vallabha Vrindavana Natabhyara Shri Radha Vallabha Vrindavana Natabhyara Bhakti Vinoda Shraya Bhakti Vinoda Shraya Yasamati Nandana Braja Varanaga Gokula Ranjana Kana Gopi Parana Dana Madana Manohara Kalya Damana Vedana Amalari Nama Mi Abhinasa Govinda Madhava Navanita Taskara Shri Radha Vallabha Vrindavana Natabhara Bhakti Vinoda Shraya Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol.
Jai Om, Mr. Pad Paramahansa, Prabhupada Kachari, Dwayanga, Shri Bechara, Bhakti, Nanda, Swami, Shri Prabhupada, Maharaj, Ki, Shri Shri Gonatai, Ki, Shri Shri Radha Pada Sadi, Lalita, Vishaka, Ki, Shri Shri Sita Ram, Lakshman, Hanuman, Ki, All glories to the symbol of the body. Hari Bol, Gita. All glories to the symbol of the body. All glories to the symbol of the body. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. So, I can have you and the two devotees from Africa, Santushta, you, Phalguna, and you can sit in one corner and somebody can, Bimal Prasad, you can translate Hindi to English. And then at the end, I'm going to call you, and you can speak for 5-10 minutes, and we'll call Santushta Krishna. You can speak about preaching in Africa. You know what you can do? You can preach a little bit about... Of course, you can't tell them too much about preaching in China, but... He's a very senior devotee of the Chinese Yatra. He's been a devotee since... Okay, I thought it's a good idea, no? We'll have him speak about it, and we'll have a few devotees here from Africa they can speak about. Okay, where's the Bhagavad Gita? Oh. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. मैं जोधपुर गया था कल आज शाम को लौटा हूं तो मैं गया तो था एक खास कार्यक्रम के लिए पर मैंने देखा कि वहां बड़ा अच्छा प्रचार चल रहा है महावर प्रभु के द्वारा उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास बड़ा अच्छा एक सेंटर लिया हुआ है एंड 40 पीपल चैनिंग सेक्शन नाम हरे कृष्ण साहब से भक्तों का हार्दिक स्वागत आज प्रोग्राम शुरू करने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि मैंने 2 बजे लौटना था और वो फ्लाइट 3 घंटे लेट थी तो जैसे मैंने कहा था मैं गीता पर आधारित थोड़ा उपदेश दूंगा और फिर हमारे साथ एक भक्त हैं जो कि चाइना में बहुत सालों से प्रचार कर रहे हैं उनको भी हम थोड़ा निवेदन करेंगे कि वो भी थोड़ा उपदेश दें Actually, there's one other God brother who has just come. This shlok hai, Bhagavad Gita ke 10th adhyay ka 11th shlok board mein likha hua hai. Tesam evanukam partham aham agyana jam tama nasayam yatma Bhava Sto Jnanam Vipena Bhashvatam Tesam Evanu Kampartham Aham Jnanatam Tama Nashayam Yatma Bhava Sto Jnanadipena Bhashvata Tesamivanu Kampartham Aham Jnana Jamtamaha Nasayam Yatma Bhavasto Jnanadipena Bhashvata Tesamivanu Kampartham Aham Jnana Jamtamaha Nasayami Atma Bhavasto Jnana Dipena Bhashvata मैं ख्याल से हम सीधा शब्दार्थ में जाएंगे
शब्दार्थ तेसाम उन पर एव निश्चय ही अनुकंपा अर्थम विशेष कृपा करने के लिए अहम मैं अज्ञानजम अज्ञान के कारण तमहा अंधकार नाशयामि दूर करता हूँ आत्मा भाव उनके हृदयों में स्थित ज्ञान ज्ञान के दीपेन दीपक द्वारा भास्वता प्रकाशमान हुए अनुवाद मेरे पीछे बोलिए मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान
दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक ये सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एक निष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूल से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवद गीता का उपदेश सार है। भगवद गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है।
हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिरंदस्य ज्ञानंजन क्यम चक्षुरन मिलितान्येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेशम सावितामेन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्वापदंतिकम। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलम श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सगजतम सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं स्वधूतं वैजना साहित्यं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका खंता Radha Kanta Namo Sute Tata Kanchana Gaurani. Vancha kalpatavyascha kripamasindhu bhayevacha paritana pavadevyo vaishnadevyo nam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Hare Krishna. We also welcome, after we started the kirtan, one of our god brothers from America walked in, Chaitanya Chandra. Chaitanya Chandra Prabhu from Dallas. He's flying tomorrow morning at 5 o'clock, huh, to Dallas. So maybe if you want, you can speak a few words after the lecture. After I finish speaking, you could speak a few words to enlighten the crowd. Okay. He just walked in. So we'll have to do a few speeches after the talk. Hare Krishna. ये जो श्लोक हमने पढ़ा ये गीता के दसवें अध्याय में प्राप्त होता है. प्रभुपाद जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की तो उन्होंने कहा था कि हम सबको गीता और भागवत दोनों का ही अध्ययन करना चाहिए. सुबह के समय इसलिए इस्कॉन के केंद्रों में भागवत का अध्ययन किया जाता है और शाम के समय गीता का अध्ययन किया जाता है. कैन यू सिट अ लिटिल बिट इन द बैक बिकॉज आई कैन हियर योर ट्रांसलेशन. इन दोनों का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है. आप श्रीमद् भागवतम में देखते हो कि जब परम भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो गए थे तो उनके सनातन साथी, इफ यू नीड अ ट्रांसलेशन इट्स ओवर देयर, देख ओके इट्स ओके. उनके सनातन साथी अर्जुन जो थे शोक में थे और अर्जुन ने उन घटनाओं का स्मरण आरंभ किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी पर उनके मित्र के सहयोग से वो सफलता प्राप्त कर सके. इसके पश्चात अर्जुन ने भगवान के भगवद गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया और जब अर्जुन ने भगवान के भगवद गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया तो उन्हें ऐसे लगा कि परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित हैं और जो उनकी उदासी थी, शोक था क्योंकि भगवान अप्रकट हो गए थे, वो सब दूर हो गया. उन्होंने ऐसे लगा कि परम भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं. आप सबकी इच्छा है कि आपको ऐसे लगे कि भगवान आपके साथ हैं. तो इस श्लोक के, इस कथा के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के गीता के संदेश का स्मरण किया उसी प्रकार हम सबको सदा निरंतर भगवान के गीता के संदेश का स्मरण करना चाहिए. और अगर आप सदा गीता के संदेश का स्मरण करोगे तो आपको ये भौतिक शोक से बचोगे, भौतिक आकर्षण से बचोगे और आपको ऐसे लगेगा कि परम भगवान जो हैं सदा आपके साथ हैं. आप लोग मोबाइल फोन बंद करोगे कृपा करके, हर सेकंड कोई ना कोई मोबाइल. तो ये रहना चाहिए हम सबका प्रयास. आप चैतन्य चैतन्यमृत में भी एक बड़ी प्रसिद्ध कथा पढ़ते हो, शायद आपने पहले भी सुनी होगी, कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में कर रहे थे तो रास्ते में रुके श्री रंगम के मंदिर में। वहां एक अनपढ़ ब्राह्मण था जो रोज एक ही स्थान में बैठ के पूरे 18 अध्यायों का उच्चारण करता था। ये ब्राह्मण था अनपढ़, पर उसके गुरु ने आदेश दिया था कि रोज बैठकर गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन करो। तो वो नियमित रूप से गुरु के आदेश का पालन कर रहा था, पर क्योंकि वो अनपढ़ था, कई श्लोकों का उच्चारण वो ठीक कर रहा था, कईयों का गलत, कई श्लोकों का अर्थ वो समझ जाता था, कईयों का अर्थ नहीं समझ पाता था, और कई लोग उसके पास खड़े होकर उस पर हंसते थे। क्यों हंसते थे? क्योंकि गांव के लोगों को पता था ये ब्राह्मण अनपढ़ है, तो वो कहते थे अरे ये तो दिखावा कर रहा है, श्लोकों का उच्चारण भी ठीक नहीं कर सकता। पर जब भी वो पीछे नहीं हटा, रोज पढ़ते गया, और जब वो गीता के श्लोकों का उच्चारण करता था तो साथ में शुद्ध भक्ति के लक्षण भी प्रकट हो रहे थे, जैसे नेत्रों से आंसू बहना इत्यादि। और चैतन्य महाप्रभु जी रोज उसे देखते थे इसी स्थान पर गीता का उच्चारण करते हुए, और महाप्रभु जी स्वयं भगवान थे, वो पहचान सके कि ये तो शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहा है। तो महाप्रभु जी उनके पास गए और पूछने लगे कि गीता में क्या है जो तुम पढ़ते हो और ऐसे लगता है कि आप शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहे हो। तो उस ब्राह्मण ने अपनी पूरी कथा सुनाई किस प्रकार गुरु के आदेश का वो पालन कर रहा है, रोज गीता को पढ़ता है, और हालांकि लोग हंसते हैं, ताना मारते हैं, छेड़ते हैं उसे, जब भी वो विचलित नहीं हो रहा। और उसने कहा कि जब मैं गीता के श्लोकों को पढ़ता हूं और जब मैं भगवान श्री कृष्ण के चेहरे का स्मरण करता हूं तो फिर मेरे आंखों से आंसू बहते हैं और इसी शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उसे गले लगाया और कहा तुम गीता के असली संदेश को समझ गए हो। तो प्रभुपाद जी इस कथा के तात्पर्य में एक संदेश देते हैं हम सबको। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि ये अनपढ़ ब्राह्मण आपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा था, किस रूप से? रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करता था, जिसका ये परिणाम हुआ कि परम भगवान स्वयं आए उसे दर्शन देने के लिए। क्यों, कैसे आए? चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? स्वयं भगवान है। क्योंकि वो रोज ही नहीं पालन कर रहा था तो महाप्रभु जी खुद आए। चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा में और भगवद गीता की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जी खुद आए और इस ब्राह्मण को उन्होंने दर्शन ही नहीं दिया, गले भी लगाया। गले लगाने के बाद 4 महीने उस ब्राह्मण को अपने साथ रखा, और 4 महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने रोज उसे और गहराई के साथ गीता का संदेश समझाया। क्या सौभाग्य है ना। और ये ब्राह्मण की क्या तालीम थी कि रोज नियमित रूप से वो गीता का अध्ययन कर रहा था। महाप्रभु जी ने अपना दिव्य रूप का दर्शन भी दिया उसे और कहा कि किसी को यह भविष्य भी नहीं कहना कि तुमने यह दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त किया है। जब चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो एक समय वो एक ब्राह्मण कुर्मा के घर में गए रहने के लिए। कुर्मा ब्राह्मण जो था आप जैसे गृहस्थ आश्रम में था और उसने ये कहा महाप्रभु जी से कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं घर छोड़कर। पर महाप्रभु ने कहा कि घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जहां हो वहीं रहो पर केवल इन पांच नियमों का पालन करो। और इनमें से एक नियम क्या था, रोज गीता पढ़ो और भगवतम पढ़ो। हमने ये इसलिए कहा है क्योंकि हमारी ये इच्छा है कि आप सब अगर आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करने की भी आवश्यकता है। हरे नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्ति के पांच अंगों की चर्चा की, कहा पहला तो है कि हमें हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो एक प्रसिद्ध भक्त रामानंद रॉय को मिले गंगा गोदावरी नदी के तट पर। रामानंद रॉय अर्जुन के अवतार माने जाते हैं और वो थे दक्षिण भारत के राजपाल और उनके राजा थे महाराज प्रतापरुद्रराव। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। आप कहोगे भगवान क्यों अपने भक्तों से प्रश्न पूछ रहे हैं, किस लिए? भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए। भीष्मदेव जी जब शरीर त्याग रहे थे, भगवान पांडव भाइयों के साथ उनके समक्ष उपस्थित थे और भगवान ने युधिष्ठिर को कहा पूछो तुम भीष्मदेव से अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न, और भगवान के समक्ष उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जगाई मदाई को उद्धार का क्रेडिट किसको दिया, किसे? नित्यानंद जी को। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी अनेक प्रश्न पूछे थे रामानंद रॉय से, उनमें से एक प्रश्न पूछा था कि हमें कौन सा गीत गाना चाहिए हमेशा, जिसके उत्तर में रामानंद रॉय ने कहा कि हमें वो गीत गाना चाहिए सदा जिसके द्वारा अब राधा और कृष्णा की प्रशंसा कर रहे हो, उनका गुणगान कर रहे हो। वो कौन से गीत में हो पाता है? महामंत्र के उच्चारण में। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उपदेश देते हुए कहा कि सबसे पहला नियम तो था कि महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, पर साथ में ये भी कहा कि हमें एक रोज गीता और भागवत का अध्ययन करना चाहिए। गीता के अध्ययन से अज्ञानता दूर होती है, जैसे कि भगवान आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। खैर यहां तो भगवान उन व्यक्तियों से वर्णन का, इस श्लोक के द्वारा उन व्यक्तियों का वर्णन है जो कि निरंतर 24 घंटे भगवान की सेवा में जुड़े रहते हैं। इस 10वें अध्याय में भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में शुद्ध भक्तों का वर्णन किया है। भगवान ने कहा कि जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनका मन 24 घंटे उनकी सेवा में ही रहता है और वो आनंद प्राप्त करते हैं मेरा गुणगान करने में, ये नहीं महसूस करते कि हमें जबरदस्ती कोई भगवान का गुणगान करवा रहा है। और अगर हम प्रेम और भक्ति के साथ उनकी सेवा में जुड़े तो भगवान ने गीता में हमें कहा है कि फिर मैं तुम्हें वो बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा तुम मुझे समझ सकोगे। भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है और जब भगवान देखते हैं कि हमारे में ये भावना है, श्रद्धा है उनके शरणागत होने के लिए, तो भगवान ऐसी स्थिति में हमें डालते हैं जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल कर सकें। भगवद गीता में भगवान ने कहा है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं हरे के हृदय में विराजमान हूं। और गीता में ही भगवान ने कहा है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपहानम च, कि मैं हरे के हृदय में विराजमान हूं, मैं स्मरण का कारण बनता हूं और अपोहनम का कारण बनता हूं। स्मरण का अर्थ है भगवान के संदेश के आधार पर जीवन को बिताना, उनका चिंतन करना, उनकी लीलाओं का चिंतन करना, उनके गुणों का चिंतन करना। और अपोहनम का अर्थ है भगवान को भूलना। वैसे भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में रूप गोस्वामी जी हमें बड़े गहराई के साथ अनेक नियम देते हैं जिनके पालन से आप भगवान के शरणागत हो सकते हो। रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी एक समय एक बड़े प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। फिर पहले छोटे भाई रूप गोस्वामी ने अपनी सरकारी नौकरी त्यागी और फिर बड़े भाई ने त्यागी सनातन ने, और चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी गहराई के साथ उन्हें शिक्षा दी प्रयाग अलाहाबाद में और उनको यह आदेश दिया भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए। तो चैतन्य चरितमृत में और भक्ति रसामृत सिंधु में आप इस शिक्षा का अध्ययन कर सकते हो। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है और इस विषय का वर्णन चैतन्य चरितमृत में भी है कि जो सारे जो नियम हैं इनका मूल भाव क्या है, हमें उस स्थिति पर लाना कि आप सदा कृष्ण का स्मरण कर सको और कभी कृष्ण भगवान को भूलो नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, मैं जो उनके हृदय में विराजमान हूं, मैं उनकी अज्ञानता को दूर करता हूं। कैसे? ज्ञान के प्रकाश के साथ। भगवद गीता के अध्ययन से हमारी अज्ञानता दूर हो सकती है। भगवद गीता की शिक्षा आरंभ होती है इस ज्ञान के साथ कि आपका असली स्वरूप क्या है। जैसे कि आप अगर किसी देश में जाओ सबसे पहले आपसे क्या पूछते हैं? आपका परिचय। तो आध्यात्मिक जीवन का क ख घ क्या है ये समझना कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा है कि पूरे भगवद गीता में दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। ठाकुर भक्ति विनोद जी ने अपने तात्पर्य में इस विषय की चर्चा की है क्योंकि अगर आप ये समझ जाओ कि शरीर और आत्मा में अंतर है और ये समझ जाओ क्या भी इस भौतिक शरीर को कभी भी संतुष्ट नहीं, इंद्रियों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाओगे भौतिक कार्यों के द्वारा, तो फिर आप भगवान के शरणागत हो सकते हो। श्रीमद् भागवतम के ग्यारहवें स्कंद में एक वैश्य पिंगला की कथा प्राप्त होती है। पिंगला एक वैश्य थी जो कि ये धंधा कर रही थी धन कमाने के लिए और इंद्रिया तृप्ति का सुख प्राप्त करने के लिए। तो एक दिन पिंगला ने अपने आप को बड़े खूबसूरत रूप से सजाया था और वो अपने बरांडे में खड़ी थी। जो ग्राहक जो भी पुरुष सामने से चल के जाता था वो प्रयास करती थी उसको आकर्षित करने के लिए, और सुबह से शाम तक कई पुरुष वहां से गुजर के गए पर पिंगला किसी को भी ग्राहक नहीं बना पाई। तो सारे दिन प्रयास किया, अपने आप को सजाया वगैरह, कोई ग्राहक नहीं मिला। शुरू में तो वो निराश हुई, फिर ये निराशा के द्वारा उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति के बजाय, पुरुषों को संतुष्ट करने के बजाय, मुझे परम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। और फिर उसने ये पाप के धंधे को त्याग कर परम भगवान के शरणागत हुई और असली सुख प्राप्त कर सकी। पर जब तक उसके मन में यह विचार था कि किसी रूप से मैं कोई ग्राहक ढूंढूं, धन कमाऊंगी, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी होगा, जब तक वो निराश और बेचैन थी, तो पिंगला ने कहा कि जब तक हमारे हृदय में एक भौतिक इच्छाएं रहेंगी आप कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकोगे, पर जब आपके मन में एकमात्र ये भाव उत्पन्न हो कि हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए, फिर जो आपका मन है हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अनेक श्लोकों के द्वारा ये स्थापित किया जाता है क्या कि हम ये समझना चाहिए कि आत्मा और देह में अंतर है। देह है नश्वर, आत्मा है सनातन। आगे तीसरे और पांचवें अध्याय में भगवान बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें कार्य करना चाहिए पर किसके लिए, यज्ञातर कर्मणो न्यातर लोकयम कर्म बंधना। कार्य करो पर वैसा कार्य करो जिसके द्वारा आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सको, या वैसा कार्य करो जिसके द्वारा आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सको। ये नहीं कि भगवान कहते हैं तुम अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागो, जैसे भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु कलेषु मम अनुस्मरण युद्ध च, कि मुझे मन और बुद्धि अर्पण करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यहां है पूरे गीता का सार कि हम कार्य करें पर किसके लिए, भगवान की प्रशंसा के लिए। भगवद गीता के ज्ञान को भगवान कहते हैं राजक विद्या राजक गुह्यम। तो आप कहोगे किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि ये है सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है सब ज्ञानों का राजा, किस आधार पर? क्योंकि अगर हम इस ज्ञान को अनुकूल कर लें और इसका उपयोग करें, इसके आधार पर जीवन को चलाए, फिर आप असली सुख शांति प्राप्त कर सकोगे। भौतिक ज्ञान जो कि हम पाठशालाओं में महाविद्यालय में प्राप्त करते हैं उसके द्वारा केवल हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है शरीर को और सुख कैसे दिया जाए। और चाहे आप कितना भी प्रयास करो, जैसे आज के वातावरण में आप देखते हो कि पहले से भी ज्यादा भौतिक सुविधाएं हैं, पर क्या आप कह सकते हो कि इन सुविधाओं के कारण लोग ज्यादा सुखी हैं? नहीं। तो ये है भौतिक ज्ञान के द्वारा केवल इस विषय पर बल दिया जाता है शरीर को कैसे सुखी बनाया जाए, पर गीता के ज्ञान के द्वारा आप ये समझ सकते हो कि किस प्रकार से हमें हर कार्य करना चाहिए भगवान की सेवा में। यत करोषि यत दक्षिणासी यत जहोसी ददासी यत यत तपस्वति कौनते तत् कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान क्या कह रहे हैं इस प्रसिद्ध श्लोक में, जो भी तुम करो, जो तपस्या करो, जो दान दो, जो प्रसाद खाओ, जो भी कार्य करो, किसके लिए करो? मेरी खुशी के लिए। भगवद गीता में भगवान ये भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयोजति। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद भक्ति करने के लिए हमें बहुत से धन की आवश्यकता है या भौतिक तालीम की आवश्यकता है, तो भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम तुलसी का पत्र, फलम कुछ हो सादा फल भी, कोई भी फल चलेगा, हाँ ये नहीं कि कोई महंगा फल होना चाहिए। पानी तोयम कहते हैं अगर प्रेम और भक्ति के साथ मुझे अर्पण करोगे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो ये आवश्यक है कि हम प्रेम और भक्ति को अनुकूल कर पाए, और प्रेम और भक्ति को अनुकूल करने के लिए साधु संगत की आवश्यकता है, शास्त्रों के संदेश के अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञानता दूर कैसे होगी ज्ञान के द्वारा, जैसे अंधेरापन दूर कैसे होता है रोशनी के साथ। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कृष्णा सूर्य समा माया हयांधिकारा, यहां कृष्णा तहे नहीं माया अधिकारा। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जा गया है इस श्लोक में, जैसे कि जहां रोशनी हो वहां अंधेरेपन का कोई स्थान नहीं, इसी प्रकार जहां कृष्ण भक्ति होगी तो वहां माया का प्रभाव नहीं रहेगा। तो भगवद गीता का निर्णय यह है कि हमें भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए। भगवद गीता के दो श्लोक हैं 18वें अध्याय में, जिसमें पूरे गीता का सार प्राप्त हो जाता है, और इस 18वें अध्याय में भगवान ये भी कहते हैं क्या, भक्तिया माम अभिनंति यवाने चास्मि तत्वतः, कि अगर तुम मुझे समझना चाहते हो तो क्या है साधन, भक्ति योग एक साधन है। प्रभुपाद जी भगवद गीता की भूमिका में कहते हैं कि कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि एक और अनुवाद क्यों प्रकाशित हो रहा है भगवद गीता का, इतने लोगों ने अनुवाद किया है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक अमेरिकन औरत आई थी उनसे पूछने के लिए कि मैं कौन सा गीता का अनुवाद पढूं, और प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं कह नहीं सका कौन सा पढ़ो, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अक्सर अनुवादक अनुवाद में अपने भाव अर्थ को जोड़ देता है, अपने भाव को जोड़ देता है। तो प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप में भगवान के संदेश को यथारूप प्रस्तुत किया है, और बड़े स्पष्ट रूप से 18वें अध्याय में भगवान ने पहले तो यह स्थापित किया कि भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा तुम मुझे समझ सकते हो। तो कई बार लोग पूछते हैं कि भक्ति का क्या अर्थ, इसका अर्थ है प्रेम के साथ भगवान की सेवा में जुड़ना। भगवान ने हमको ध्येय दिया है, इंद्रियां दी हैं, मन दिया है, वाणी दिया है, इन सब का हमें उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में कथा पढ़ते हो कुबेर के पुत्रों का, कुबेर हैं देवता के खजांची, तो धनी हैं, और आप आज के जमाने में भी देखते हो धनी घराने के बच्चे उनमें ज्यादा अच्छी आदतें होती हैं बुरी? अच्छी आदतें बहुत कम दिखती हैं। तो कुबेर के पुत्र भी धनी पिता के बेटे थे, गंदी आदतें पड़ गई थी, इतना तक कि एक समय इतने नशे में थे कि जब नारद मुनि जैसे संत भी वहां पहुंचे तो उन्होंने सोचा नहीं कि हमें शरीर को ढक देना चाहिए। तो नारद मुनि जी ने उन पर खास कृपा की, उन्हें श्राप दिया कि तुम पेड़ बन जाओगे, पर आपके दिल्ली या लंदन या न्यूयॉर्क में नहीं है, कहां पेड़ बनोगे? नंद महाराज के आंगन में। तो वैसा श्राप आपको भी मिले तो शायद आप बुरा नहीं मानो। जैसे हमारे कृष्णा बालराम मंदिर वृंदावन में एक तमाल का पेड़ है, आपने देखा होगा जो गए, तो आपको वो पेड़ जो है अत्यंत भाग्यशाली है, सारा दिन राधा श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त करता है। आप तो 5 मिनट 10 मिनट दर्शन लेते फिर भागने की कोशिश करते हो, पर वो पेड़ सुबह से रात तक वहां खड़े रहता है। इसके अलावा हर आरती में वो उपस्थित रहता है। आप एक आरती में जाते हो तो सोचते आपका कोटा हो गया है ना, पर वो पेड़ मंगल आरती से शाम की आरती तक और सारा दिन क्या करता है? आइंदर प्रभु उनकी सेना का कीर्तन सुनता है कि नहीं? तो बड़ा भाग्यशाली पेड़ था। तो नारद मुनि ने भी श्राप दिया इन दो लड़कों को पेड़ बनने के लिए, पर साथ में एक वर भी दिया। एक वर तो यह था कि नंद महाराज के आंगन में, दूसरा वर यह दिया कि 100 साल के पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। देवताओं के 100 सालों के बाद, हमारे 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर बनते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के वचन का पालन करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भी इतने श्राप दिए, इतना वर दिया था हिरण्यकश्यपु को, जो भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु का वध भी किया, सारे जो वर दिए थे उन सब का पालन करते हुए, तो भगवान ने इन दो जो दो पेड़ों को गिराकर जिनके अंदर से दो बेटे निकले कुबेर मनुग्रीव, तो फिर इन दो लड़कों ने एक बड़ी अच्छी स्तुति की रचना की। उन्होंने कहा, अब से हमारी इच्छा है कि हमारे नेत्र सदा आपका दर्शन लें, हमारे कान सदा आपका गुणगान सुने, हमारे पैर सदा आपके मंदिरों में चलकर जाएं, दूसरे शब्दों हमारा सिर हमेशा वैष्णव के सामने झुके। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा, अब से हमारी इच्छा क्या है कि हम केवल आपकी भक्ति में रहें। तो उसी प्रकार हम सबका जन्म होता है अज्ञानता में, हम पलते हैं अज्ञानता में, पर किसी न किसी रूप से किसी साधु की संगत में आकर हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा सनातन गोस्वामी से, ब्रह्मांड ब्रह्मीते कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लदा बीज। अनेक जन्म मृत्यु के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे क्या मिलता है? भक्ति का बीज या भक्ति का ज्ञान। जैसे कि आप सब जो यहां उपस्थित हो, आप सब बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि किसी न किसी रूप से आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है भक्ति की महिमा के विषय में। और कुबेर के पुत्र ने अपनी स्तुति में कहा, अब से हमारी ये इच्छा है कि हम इन इंद्रियों का उपयोग करें सदा आपकी सेवा में। तो उसी प्रकार जब हम अज्ञानता में थे तो हमारे मन में ये भाव था, भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, पर भक्तों की संगत में आकर प्रॉपर जी ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात आपको शिक्षा प्राप्त होती हुई क्या कि आप किसी रूप से मन इंद्रियों को कभी संतुष्ट कर ही नहीं पाओगे, श्रीमद् भागवत में आप एक कथा पढ़ते हो महाराज ययाति की। महाराज ययाति को 10,000 वर्षों के लिए इतनी सुविधा थी इंद्रिय तृप्ति के लिए कि आप इसकी कल्पना सपना इसका सपना भी नहीं देख सकते। और 10,000 साल के पश्चात महाराज ने क्या निर्णय दिया? उन्होंने कहा कि मैं अपनी इंद्रियों को कभी संतुष्ट नहीं कर पाया। उन्होंने कहा आई वॉज लाइक अ लस्टी गोट। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे बकरे का। बकरा जो है कत्ल खाने के बाहर है और अगर उसे भोग विलास इंद्रिय तृप्ति का मौका मिले उसका लाभ उठा लेगा, ये नहीं जानता कि मिनटों में कत्ल खाने में उसकी बारी आने वाली है। तो शास्त्रों में यह कहा गया है कि आप भौतिक कार्यों के द्वारा कभी भी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए महाराज ययाति ने क्या निर्णय दिया है कि हमें इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए किससे? भगवान की सेवा में। तो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हमें इंद्रियों का उपयोग करें सदा भगवान की सेवा में। तो भक्ति का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना भगवान की सेवा में। और आगे भगवान गीता में क्या कहते हैं? सर्वधर्मा परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षे स्वामी मास्य। भगवान कह रहे सब धर्म क्या मेरी शरण में लोग मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तो हमारा लक्ष्य यह है कि हम भगवान के शरणागत हों, सदा उनका चिंतन करें, उन्हें नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें, उनकी सेवा में जुड़े। पर भौतिक वातावरण में रहते हुए अब ये भी देखते हो कि माया काफी तेज है, सच है कि नहीं? माया का क्या प्रयास रहता है? सबको विचलित करने के लिए। जब आप साधुओं की संगत में आते हो तो जब आपको साधु निमंत्रण देते हैं भक्ति के कार्य में जुड़ने के लिए, और जब आप भौतिकवादियों की संगत में रहते हो तो वो आपको निमंत्रण देते हैं उनकी संगत में रहने के लिए। तो भगवान खुद कहते हैं देवेश गुणमाई मम माया दुर्दया। इतना गुरु की माया का विरोध करना कठिन है, पर जो मेरी शरण में आ जाए वो इसका विरोध कर सकता है। तो भगवत गीता में भगवान हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि हमें उनके शरणागत होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जैसे मैं कह रहा था, उन्होंने चैतन्य चतुर्मृत में अनेक नियमों का वर्णन किया है। चैतन्य चतुर्मृत के 22वें अध्याय में महाप्रभु जी कह रहे हैं प्रमाणिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु की शरण लो, गुरु से दीक्षा लो, फिर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अगर कोई त्यागने की आवश्यकता तो उसे त्यागो, पूछो कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, और अगर कोई त्यागना पड़े तो त्यागो। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को कहा था जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। और भक्ति का मार्ग पर चलो महान आचार्यों की शिक्षा पर आधारित, ये नहीं कि अपना मनमानी कार्य करो और कहो ये भक्ति हो रही है। बड़े स्पष्ट रूप से चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि हमें जो शास्त्र हैं और जो आचार्य हैं उनके मार्गदर्शन के आधार पर ही चलना चाहिए, और उनके मार्गदर्शन के आधार पर चलोगे तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि एकादशी का भी व्रत रखो, महीने में 2 बार एकादशी होती है, एकादशी का व्रत रखो, धाम में रहो या धाम जाओ, धाम का दर्शन लो। सब धाम में जाएंगे रहने के लिए तो बाकी स्थानों में प्रचार कौन करेगा? और आगे ही भारत के धामों में जमीन की इतनी महंगी हो गई है तो अगर आप सब वहां जाओगे खरीदने के लिए तो शायद आप जमीन प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसे ज्यादा अच्छा है जहां हो उस स्थान में धान धाम का वातावरण रखो। फिर आगे महाप्रभु ने कहा अपराधों से बचो। अनेक प्रकार के अपराध हम कर सकते हैं और करते हैं। एक है नाम अपराध, जीव अपराध, गुरु अपराध। तो इन अपराधों से बचो। 10 नाम अपराध हैं जिनका हम वर्णन करते हैं रोज सुबह, और आप सब भक्तों को इसका स्मरण करना चाहिए और इसे इन 10 नाम अपराधों के विषय में ज्ञान रहना चाहिए। तो जो नाम अपराध हैं उनसे बचो। नाम अपराधों में एक नाम अपराध है सावधानी से जाप नहीं करना। जब आप जप करने बैठते हो तो हमारा भाव होना चाहिए कि हम बिल्कुल सावधानी से जाप करें। फिर है जीवा अपराध, फिर वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। वैष्णव अपराध के द्वारा भक्ति नष्ट हो सकती है। कल सुबह हम श्रीवास पंडित की कथा सुना रहे थे तो हमने वो उस वैष्णव अपराध की का वर्णन किया था। वो गोपाल ब्राह्मण जिसके हृदय में ईर्ष्या थी, और वैष्णव अपराध का क्या परिणाम हुआ? ये परिणाम हुआ कि उन्हें कोढ़ की बीमारी हो गई और वो उन्हें तड़पना पड़ा। तो अपराधों से हमें बचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने उपदेश देते हुए कहा कि जिस प्रकार एक सुंदर बगीचा हो और अगर उसमें एक पागल हाथी आ जाए तो क्या परिणाम होता है? पूरा बगीचा जो है नष्ट हो जाता है। इसी खास करके जो गंभीरता से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनका प्रयास रहना चाहिए कि वो अपराधों से बचें। फिर हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, पर शास्त्रों को पढ़ते समय उनका जो असली भाव है उसे समझना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल शास्त्रों को पढ़ रहे हैं बड़ा पंडित बनने के लिए या धन कमाने के लिए। आजकल आप देखते हो भगवत कथा एक प्रकार का धंधा बन गया है। लोग भगवत कथा करते हैं धन के लिए। पर हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए इसलिए कि शास्त्रों का जो निर्णय है उसका हम पालन करें और भगवान के शरणागत हों। फिर देवताओं को हम इज्जत देते हैं पर यह स्वीकार करते हैं शास्त्रों के अनुसार कि जब आप कृष्ण भगवान की सेवा करो तो उसके द्वारा जो 33 करोड़ देवता देवियों हैं उनके प्रति जो आपका आभार है उसको भी आप चुका रहे हो। भागवतम के 4वें स्कंद में नारद मुनि जी उदाहरण देते हैं। नारद मुनि जी कहते हैं जैसे कि आप पेड़ के जड़ में पानी डालो। प्रचेतस जो थे एक बड़े प्रसिद्ध राजा के पुत्र थे, महाराज प्रचिन भरी के। तो उन्होंने इतनी दिव्य ऐसी तपस्या की थी जिसके द्वारा भगवान का दर्शन भी प्राप्त किया और नारद मुनि जी ने उन्हें दिव्य शिक्षा दी। तो नारद मुनि जी कहते हैं जैसे कि आप पेड़ के जड़ में पानी डालो तो सब पत्तों सब जगह तक पानी पहुंच जाता है। जैसे कि अगर आप पेट में खाना डालो तो पूरे शरीर में उसका प्रभाव आ जाता है। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति के द्वारा जो आपकी अनेक जिम्मेदारियां हैं देवता देवियों के प्रति सबका आप पालन कर सकते हो। तो जो वैष्णव हैं शास्त्रों की निंदा नहीं करते, देवता देवियों की निंदा नहीं करते, पर भक्ति करते हैं कृष्ण भगवान की। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है एकला ईश्वर कृष्ण और सब मृतया। फिर वैष्णव को वैष्णव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। जब आप किसी वैष्णव को देखते हो कि किसी और की आलोचना कर रहा है निंदा कर रहा है तो साथ देने के बजाय उस स्थान से आपको दूर हट जाना चाहिए। वैष्णव निंदा करोगे वैष्णव निंदा सुनोगे तो उससे आपकी अपनी भक्ति जो है वो कमजोर हो जाएगी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने अनेक नियम दिए जिसके द्वारा हम भक्ति के मार्ग में जुड़कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो भगवद गीता का अगर हम ध्यान से अध्ययन करेंगे नियमित रूप से तो आप देखोगे ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने से क्या होता है, अगर मान लो आपके पास एक तेज छुरी हो, चाकू हो, तो उसे ज्यादा आसानी से काट सकते हो। आपकी बुद्धि अगर ज्ञान से भरी हुई होगी तो बड़ी सरलता से आप ये पहचान सकोगे ये कार्य प्रतिकूल है ये अनुकूल है। और जब आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा ही नहीं तो आप कैसे पहचानोगे क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो इसलिए हमें बड़े ध्यान से गीता भागवत को पढ़ना चाहिए। जैसे आप ध्यान से पढ़ाई करते हो, इम्तिहान की तैयारी करते हो, उसी प्रकार बड़े ध्यान से हमें इस शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था जप करो, महामंत्र का उच्चारण, गीता पढ़ो, साधु संगत का लाभ। साधु संगत का हमें लाभ उठाना चाहिए। आप पढ़ते हो किस प्रकार मृगाणी शिकारी नारद मुनि की संगत से कैसे उसका उद्धार हुआ, और अनेक और उदाहरण हैं किस प्रकार साधु संगत से लोगों के हृदय में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न हुई। तो साधु संगत का लाभ उठाओ, केंद्र में आओ, नामहार भक्ति वृक्षा कार्यक्रम में आओ, सत्संग में आओ। और आगे उन्होंने कहा भगवान के आचार्य विग्रह की उपासना करो। भगवान इतने दया दयालु है क्या कि वो अपने आचार्य विग्रह के रूप में प्रस्तुत होते हैं और हम सबको मौका देते हैं क्या उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। तो हर व्यक्ति बड़ी सरलता के साथ इन नियमों का पालन कर सकता है। और आप सबसे यह निवेदन है कि आप गीता को, इन शास्त्रों को ध्यान से पढ़िए। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भगवान देखते हैं कि हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर इन ग्रंथों में है क्या, इन ग्रंथों में है भगवान की वाणी जिसके आगे व्याख्या महानाचार्यों ने किए हैं और प्रभुपाद जी तात्पर्य में संक्षेप रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति मुझे समझने का प्रयास कर रहा है, और फिर भगवान बुद्धि देते हैं क्या जिसके द्वारा हम उन्हें समझ सकें। इसलिए इन शास्त्रों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए इन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं मैं हरे के हृदय में विराजमान हूं, जब वो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए मैं ज्ञान के दीपक से उनके अंधेरेपन को दूर कर देता हूं। तो इस ज्ञान की आवश्यकता है। भौतिक ज्ञान के द्वारा केवल आप भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति के विषय में सीखते हो, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आप सीखते हो क्या कि आपका असली कर्तव्य क्या होना चाहिए। और हरि नाम के उच्चारण से, शास्त्र के अध्ययन से आप ये दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकते हो। भगवान ने क्या कहा, देवेश गुणमाई मम माया दुरतया। ये त्रिगुणी माया का विरोध करना बहुत ही मुश्किल है, दुरतया मामे वामे प्रपद अंधे माया मताम दे। पर अगर मेरे ही शरण में तुम आओगे तो फिर तुम अपने आप को इसके प्रभाव से बचा सकोगे। तो भगवान की यही इच्छा है, इसलिए वो स्वयं आते हैं, अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। और शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं, जैसे हमने महाराज ययाति का उदाहरण दिया, पिंगला का उदाहरण दिया, अनेक और उदाहरण हैं जिनके द्वारा आप ये समझ सकते हो कि आपको क्या कार्य करना चाहिए, किस कार्य से बचना चाहिए। तो कृपा करके इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्णा। मैं जरा जो दूसरे भक्त हैं मैं जब चाहता हूँ कि पांच पांच मिनट में वो भी बोले, इधर ओके हाँ इधर कृष्ण चंद्र इज गॉन ओके अ चाइनीज नेम चाइनीज सिद्धदेव दास प्रभु यू लाइक टू स्पीक योर वर्ड्स सिद्धदेव प्रभु इज फ्रॉम कम्युनिस्ट चाइना He's a disciple of our God brother Tamal Krishna Maharaj, am I right? And oh, I was looking for you at Krishna Chaitanya. And he joined the movement. Krishna Chaitanya Chandra, would you like to speak a few words after him? I am already introducing him. And he became a devotee in 1994 in China. And of course, he's not going to tell you anything about preaching in China for various reasons. We can't speak, but he'll speak a little bit. Would you like to speak after him, please? Please speak a few words. We have a lot of guest speakers today. We have three guest speakers. Okay.
So, first I thank Maharaj to give
Take
me
this mic. This mic is better. It's louder.
So first I thank Maharaj to give me a chance to speak a few words to Indian devotees and Indian people. So actually before I came to India, my colleague asked me, why you go to India? India is, as far as they know, it's poor, and India is dirty place. Why you, waste your money to go to India? You can go to Sydney. You can go to London, everywhere, better than India. So I don't know whether he's right or not. So I just came. But after I come to India, I visit Mayapur, the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then I feel that actually India is very, very rich. So, as Maharaj said, that every tree, every crepe, every river in Holy Dham can give you love to God. So, we just imagine, just a dust of, just a particle of dust can give us love to Krishna. That is unlimited treasure. So, that is what India, what Holy Dham gave me. But I feel if you go to Shanghai, then what will you find? You will find only karma, that is lust. No prema, but lust. Shanghai is one of the biggest cities in China. So very materially very advanced. But if you go to Shanghai, you cannot see anything spiritual. You can only... So I suggest if somebody go to Shanghai, what you see? You can see only big shops, and people are craving after sense gratification. So actually, there's no culture in Shanghai. Shanghai, as many of Chinese even scholars said, Shanghai is a desert of culture, desert of love. No love, only lust. So people, although they are rich materially, but they are very poor spiritually. They have no faith in God. They even, so they only believe in money. So every day they just, their mantra is money, 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 money. So, but they don't get happy. They get hopeless and frustrated. So as it is reported that Shanghai is the highest suicide rate in China. So just imagine, highest suicide rate. Yeah, so although people get so much opportunity to enjoy material life, enjoy sex, enjoy opulence, but they take suicide. and they take drug, everything. So, but here in Holy Dham in India, I can feel people, they are very rich in their heart. So today, I went to Delhi Street to distribute Prabhupada's book. And I met many Indian gentlemen. So I tried to convince them to take one of Prabhupada's book. So some of them take, some of them did not take. But although some people, they did not take Prabhupada's book, they should respect to me, and should respect to the books, and or should respect to Krishna. So I can feel Indians, they are, from birth, they are devotees, they are Krishna devotees. And their heart is sweet, and they can give love. But in Shanghai, I feel no love, only lust. So that's what I want to share with all Indian devotees, Indian people. Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So next speaker is Chaitanya Chandra Prabhu. He is a disciple of Srila Prabhupada. He joined the movement in America in 1975. At that time, Tamal Krishna Maharaj was a big leader. He had a very big traveling Samkirtan party. And he had about 18 buses at one time.
We had like 6 buses, 80 vans.
Yeah. Buses and vans traveling all over America doing book distribution. So he joined the movement in 1975. He lives in Dallas, America. You know where Dallas is? Okay. Indians know every city in America now. So he's going back to America tomorrow morning at 5 o'clock. So I thought he could speak also a little bit. He's a proper disciple.
Hare Krishna. Hare Krishna, I'll just stand. Krishna, Krishna. Hare, Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram, Ram. Hare, Hare. It's okay, Marge. I'm not dressed properly. My travel clothes.
He's in his travel. So he wasn't planning on speaking. I just
came in to take darshan. I got put on the spot here, so sorry. Anyway, many of you have probably been to U.S., Dallas, Texas. We have a beautiful, beautiful temple and community there called Sri Sri Radha Kalachanji Dham. Kalachanji came from Jayapur. Srila Prabhupada brought him from Jayapur to Dallas and installed him there in Dallas in 1972. So we've had a beautiful community there. Tamal Krishna Maharaj arranged. We own like maybe 45 houses around the block of the temple. Have our own school for our children, and a beautiful restaurant, also a nice temple room, and we have many, many wonderful congregational members from India. We have probably 500 steady congregational members. We get maybe 3,000 to 4,000 on Janmashtami. So it's a nice connection I have to India because of all the nice devotees from there. So it's always nice to come here to the Dham. This is also a Dham. This is the place of the Pandavas, Hastinapur, and Delhi. Delhi is a Dham also, the Pandavas kingdom of Hastinapur.
They don't have to go to any other Dham now.
Plus, it's so easy. You just jump on the new highway and you go to Vrindavan. It only takes a couple of hours. It's so nice.
This is also dumb.
Yes, but this is also dumb. Yes. Did all of his printing here in Delhi. Srila Prabhupada did so much austerity here. Anyway, so we just invite you all, if you come to Dallas, you come and visit the temple. And Houston also, we're building a beautiful new temple there. It actually kind of looks a little bit like this temple. They designed it after the top part. The dome looks like the top of your dome here. It's really going to be beautiful. Not as big as this, but pretty good size. So there's a lot of nice things happening in America. It's not quite as progressive as India. There's not so many enthusiastic people compared to here, but it's also very nice. So y'all, please, if you get a chance to come to Texas, come there and visit Radha Kala Chenji Dham. Prabhupada also spent a lot of time there in Dallas. We had our first school there. We still have a nice school there. So please come. And please take advantage of your nice temple here. This is such a fabulous facility. If you can somehow assist in the preaching here, you'll become greatly benefited. This is such a powerful preaching facility. The devotees who are here are very fortunate, and you all are very fortunate to have Maharaj's association. Okay. It's so nice coming to Vrindavan and Mayapur. You get to see the international effect of the chanting of the Hare Krishna mantra. You see so many devotees from all over the world. And like you have around the temple, the beautiful pictures of all the deities from all around the world. So you can see this isn't just an Indian religion. Sometimes people call us Hindus or something, but actually it's universal. It's Sanatan Dharma. So the Hare Krishna mantra is for everybody. It's effective on everybody. Anytime somebody gets an opportunity to hear the Hare Krishna Maha mantra, they make so much advancement. Lord Chaitanya Mahaprabhu asked us to whoever we met, we could teach them to chant Hare Krishna and teach them something from Bhagavad Gita. These activities of giving Krishna to others, these activities are pure devotional service. So if you're wondering what you can do, which is pure devotional service, these things guaranteed are pure devotional service. Of course, following the order of the Guru, that's pure devotional service. But the preaching mission of Chaitanya Mahaprabhu, of giving Hare Krishna mantra to others and giving Bhagavad Gita to others, this is pure devotional service. So you can do pure devotional service even in this crazy big city of Delhi. It's such a passionate place. Just driving through here, I was like, wow, this is so... It's like New York times 10. And New York is very... It's such a huge city, and there's so many people to preach to. So everybody here has so much opportunity to do pure devotional service by helping others preach. By helping others by preaching, and by teaching others how to preach also. So please take advantage of this opportunity of Chaitanya Mahaprabhu's mission, Srila Prabhupada's mission, and try to help others. And then you'll become happy and they'll become happy. Hare Krishna.
Hare Krishna. We also have two devotees from Africa. Would you like to hear them? Okay, Santosh of Krishna and Palguna. They are from... We had someone from America, someone from China, and someone from Africa. So, they're both from Nairobi, they're my disciples actually. So, Santa Krishna looks after the African program in Kenya, and Palguna does the Food for Life program. So they can speak a few words, okay? Don't feel shy, just say what you want.
Hare Krishna. I would like first to give a lot of thanks to Guru Maharaj for giving me this opportunity to say a few words. My name is Santosh Krishna. I come from Nairobi, Kenya. Probably most of you have heard of Nairobi, Kenya, Africa, but you've never crossed the ocean to come and see what Africa is like or what Nairobi is like.
So we have a very beautiful temple in Nairobi. I should show you a slide. Nairobi ka mandir hai, iskan ka sabse khubsurat mandiron mein gina jata hai. And that temple there has so many flowers. We have two rooms full of flowers all the time. And all these flowers are donated. We don't buy it. The best flowers in the world grow in Kenya.
So we have programs going on, preaching programs going on in Kenya, also in Nairobi. And just like Guru Maharaj said, we have never run short of flowers because Kenya is a flower-growing country. And most of the flowers that we get to use for the deities are fresh flowers. We've never got like a whole day flowers staying in the altar. In some places you go, you find like they use the garlands, then like in the evening there's flowers. So we keep changing this because Krishna's provided us with these facilities. And just like Srila Prabhupada says, that whatever little we have, we should use to glorify Lord Sri Krishna. There's one thing also that I wanted to share with all the devotees around. Of course, for me, this is my first time to set my feet in Bharat Vasa. And I've always read most of these past times in the scriptures. There's one point that Srila Prabhupada stresses so much on, that we should be one family. I realized this when we were doing Parikrama in Mayapur, and when I looked around and I saw the devotees from different parts of the world, and then I thought of one thing. Actually, it's a point that Prabhupada really he uttered this, that he has constructed a house where everyone can come and take shelter in. We can all come and stay together. But then when I was reading this, I was like, what does Prabhupada mean by this? What does he mean by he has built a house that everyone can come and live in? When I was in Mayapur, I saw the devotees together, doing parikrama together, chanting, staying together peacefully. I never witnessed any kind of bad exchange or bad uttering of words. And I thought, wow, this is really one family. So just like Prabhupada has given us this philosophy that has brought us beyond the bodily concept of life, let us all come together as one family, as a family of Srila Prabhupada, and help Prabhupada to spread this Krishna consciousness all around the world. All the devotees here, you're all invited. Those who can make it to come and be with us in Nairobi, you can come and see the beautiful, we have Radha Banki Bihari. And just like... And there's a beautiful Harinam that goes on the streets of Nairobi. So the Christians are very strong there. Sometimes the abuses, sometimes when we go on Harinam, they come in a group and they start preaching to us also, and they hold their Bibles and they're like, in the name of Jesus. But I thank Guru Maharaj so much because he's always been visiting with us and he has given us that strength that although you are so few, but you have to keep the spirit, you have to keep the burning fire going on. That we are doing this for Srila Prabhupada and to glorify Lord Krishna. Thank you so much. Hare Krishna.
He was saying that when ye keh raha tha ki jab hum log harinam mein jate hain to Christian log aate hain, taana maarte hain, Bible quote karte hain, unko hi prachar karte hain, kai baar patthar bhi maarte hain jab bhi ye log harinam mein jate hain. This is Falguna Das. He's in charge of our Food for Life program in Kenya.
Initially, I used to be called Frederick. That used to be the name of this body, of which I don't know most of us, we have the same name for the bodies. You know, we have different names. Anyway, when Prabhupada came to Kenya, he gave instruction that you should do three things. That is Harinam, books, and Prasadam. And actually, those three things are being carried on in Nairobi. And I have... big challenge being in India. It's like, where do you come from? Africa. Oh, the people, they think that Africa is one country. It's a continent. But imagine when Christian was being brought in Africa, the whites, they came with one side they had a gun and the other side they had a Bible. I see we are so fortunate now. We have our mantra in our hands and Bhagavad Gita in Africa. So it's like, it's a good thing. So I'm so happy to be in India. I think I'll share the same thing with my young people in Kenya. So, Congratulations to my Guru Maharaj and every devotee. I have seen that New Delhi temple is like youth-oriented temple. Youth, they can feel that they are at least in somewhere. So it's good for you, youth. So it's a challenge for youth, either to utilize the opportunity or either to leave the opportunity go. Thank you so much.
All right, thank you. Tell them all the food you like, you know, how many people you serve every day.
Sorry.
Trucks you take out.
Yeah, in Nairobi we carry our program Food for Life. We have two trucks. Every day we distribute at least a few of 2,000 plates every day. And this one we do in, even in government school. Like you've heard of the Day of African Child. The government of Kenya approaches the temple president, the authorities. They need our support. So it's like in Kenya, the environment is so conducive for preaching through Food for Life and other programs. So,
what do you sell?
What we serve local made prasadam. That
local
includes beans cooked separate with potatoes and tomato, and then rice cooked separate. So it's a different
African recipe.
It's hot prasadam every day. Beat Sunday every day.
In Africa, Prabhupada's movement is African. In Russia, it's Russian. In America, it's American. So they provide African dishes. Now in Nairobi, we're building a big project. We are going to inaugurate that in July. And we're going to have a restaurant there where we're going to serve African dishes, but half of the cost price. So many people come to eat because Africa is a poor country. And hopefully, they'll get Krishna Prasad. Okay? Okay? What's 9:30 now? 2:35, huh?